जब इंसान कहीं प्रदेश में जाता है ना तो अहले वतन को देखकर खुशी होती है। ऐसी ये जो दुनिया है ये भी सरवर आलम से मुलाकात से ये सब प्रदेश है, और प्रदेश में जब वतन की याद की जाए तो मजा आता है। जैसे इंसान जिस इलाके का हो तो जब अपने इलाके वाले लोगों से मिलता है या इलाके की गजा देखता है उसको खुशी होती है। हम चूंकि सबके सब आखरत से आए हैं और दुनिया में हम परदेसी और मुसाफिर हैं और आखरत में वापस जाना है, यही वजह है कि जो आखरत के आमाल हैं जैसे नमाज पढ़ते हैं दिल को सुकून मिलता है, रोजा रखते हैं दिल को सुकून मिलता है। यानी अल्लाह ताला ने जो इबादत और जो आमाल बताए इन तमाम आमाल को करने से दिल को सुकून मिलता है। क्यों? इसलिए कि वतन के आमाल है, वतन के आमाल है। और यहाँ हम सबके सब परदेसी। जैसे एक आदमी मुल्क से बाहर जाता है, दुबई गया, बहुत अच्छे होटल में ठहरा, 5 स्टार होटल है बल्कि 7 स्टार होटल, और उसके एक एक चीज बहुत उम्दा बढ़िया। लेकिन जब वहां से दो दिन ठहरा जब 2 दिन ठहरने के बाद वहां से निकलता है कुछ भी साथ लेके नहीं आता, बस यही हाल दुनिया का है। कितना ही किसी आदमी के पास अमेरिका का पासपोर्ट हो, ग्रीन कार्ड हो, कनाडा का पासपोर्ट हो, ऑस्ट्रेलिया यूरोप का हो, लेकिन मरने के बाद फरिश्ते थोड़ी कहेंगे अच्छा जनाब आइए जनाब आपकी इमिग्रेशन, आपकी जैसे आजकल कहते हैं ना दाढ़ी वालों की इमिग्रेशन खास होती है, तो वहाँ इनकी इमिग्रेशन खास होगी। कब्र में फरिश्तों की जो है इनकी खास इमिग्रेशन करेंगे, अरे आप तो स्पेशल आदमी आए, आपके साथ तो स्पेशल मामला होगा। तो इसी तरह से यहाँ जो भी है फैक्ट्री है मकानात है, मैं यही अर्ज किया था ना एक दफा कि हमारे इलाके में डंपर और मशीनें ज्यादा हैं, एक्सकेवेटर मशीनें जो कि खुदाई करती है, लेकिन किसी के पास 50 एक्सकेवेटर मशीन हो अपनी एक्सकेवेटर मशीन से अपनी कब्र भी नहीं खोद सकता कि अपनी एक्सकेवेटर मशीन से अपनी कब्र खोदे। आप बताइए कितनी अच्छी गाड़ियां हो, कितनी अच्छी शानदार गाड़ी हो, मर्सिडीज है और जनाब बाहर मुल्कों में बहुत होती है, BMW रखी है जनाब, रोल्स रॉयस है, होल्डन की गाड़ी रखी हुई है, लेकिन उस पर अपना जनाजा भी नहीं जा सकता। कैसी अजीब बात कि इंसान अपना जनाजा भी नहीं ले जा सकता, ऐसा हाल वही माल है, कितने डॉलर हो कितने ही सब कुछ यही रह जाएगा। बल्कि मेरे शेख रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अगर कोई इसी बेटे को अपने बाप से बहुत मोहब्बत हो और बाप का इंतकाल होया, अब बेटा कह रहा है कि मैं इसको कब्रिस्तान जनाब दफन नहीं करने दूंगा, तो उसकी माँ समझाएगी, मौलवी साहब समझाएंगे, अरे बेटा गर्मी का जमाना है 24 घंटे में लाश पड़ जाएगी, 24 गर्मी में 24 घंटे में और सर्दी में 72 घंटे में लाश फट जाती है, तो ऐसी सड़ान और बदबू उठेगी। इसलिए आप देखिए जो जनाजा होता है वहां बर्फ की सिल्लियां रख दी जाती ताकि लाश सड़ने ना पाए, न ऐसी बदबू उठे कि कोई अपना करीब भी ना बैठे, कैसा आलम। तो यही है, फिर अब वही बेटा जो था वो जनाब वो भी कहेगा हाँ भाई लेके चलो। इसलिए फरमाया कि जनाजा जब कब्र में जाता है तो जनाजे वाला क्या कहता है, शुक्रिया, यानी वो मुर्दा कहता है शुक्रिया ऐ कब्र तक पहुंचाने वालों शुक्रिया, शुक्रिया ऐ कब्र तक पहुंचाने वालों शुक्रिया, अब अकेले ही चले जाएंगे इस मंजिल से। और बाजे लोग बाज जनाजे वाले शिकु शिकायत करते कि जो हर वक्त साथ साथ रहते थे गप लगाते थे तो वो उनको और दुनिया से दिल लगाया, वो क्या कहता है दबाकर कब्र में चल दिए न दुआ न सलाम, दबाकर कब्र में चल दिए न दुआ न सलाम, जरा सी देर में क्या हो गया जमाने को। कि जिससे मुंह फोल्ड करके पूछते थे हाँ भाई कहाँ हो किधर पहुंचे अब किधर हो भाई जल्दी आओ यार, अब वो आलम यह है कि उसको कोई पूछ ही नहीं रहा, दबाकर कब्र में चल दिए न दुआ न सलाम, जरा सी देर में क्या हो गया जमाने में। अब वही जमाना जो आगे पीछे घूम रहा था अब कब्रिस्तान में वो अकेला लेटा है, कैसा भी यार और मत का। लेकिन अगर वही दुनिया के अंदर अल्लाह ताला की मोहब्बत अल्लाह ताला की दीदार खुशी के अमाल करे तो अल्लाह ताला उसे कब्र में अकेले नहीं रहने देंगे, फिर क्या करेंगे, फिर वो वो देखेगा कि नूरानी शक्ल वाले कई लोग आ गए, पूछेगा जनाब ये तुम कब्र में, मेरी कब्र में तुम कैसे आ गए, कौन है आप जनाब? कहेगा मैं आपकी नमाज हूँ, कोई कहेगा मैं आपका रोजा हूँ, कोई कहेगा मैं आपकी ज़कात हूँ, कैसे आना हुआ? कि अल्लाह ताला ने भेजा है कि ये मेरा बंदा है, इसने दुनिया में तुम्हें ना भूला और हर सर्दी गर्मी हर मौसम में तुम्हें याद रखा कि फजर की नमाज में उठना मुश्किल, लेकिन तुम्हारे लिए तुमसे ऐसा ताल्लुक पैदा हुआ कि तुम्हें भूला नहीं, तुम्हें याद रखा। तो आज मेरा बंदा अकेला है, जाओ अपने दोस्त का जाके दिल बहलाओ। तो असली दोस्त तो वो है, असली दोस्त तो ये आमाल है। बाकी जिसने जिनको सबने हमने दोस्त बनाए हुए हैं, जिनके साथ घूमने जा रहे हैं और कड़ाइयां खा रहे हैं जनाब और गप्पे लगा रहे हैं और हाय 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 स्काइप पर बातें हो रही है और व्हाट्सएप पर चैटिंग हो रही है, ये सब के दर्द सब दोस्त कोई काम नहीं आएंगे, ये दोस्त काम आएंगे। अब वो कब्र में है तो फिर कहेगा अच्छा, जैसा सोचो उसकी खुशी का क्या हाल होगा। और अल्लाह ताला ने इल्म अज़ीम अता फरमाया। हदीस शरीफ में आता है कि कब्र जो है वो मोमिन के लिए, फरमा बरदार के लिए वसत नजर तक जो है वो हद नजर तक वसत वसी हो जाएगी। ये बात सुनिए ना कि मोमिन के लिए। अब सवाल पैदा होता है कब्रस्तान में एक आदमी खड़ा है, वो कहेगा देखो कोई मुनकिर कब्र वो यही तो बातें करते, कहते कि ऐसे कैसे हो सकता है, इतनी छोटी सी जगह कैसे वसी हो सकती है, यहाँ पे कितने मुर्दे लेटे हुए। तो देखिए अल्लाह ताला ने एक इल्म अता फरमाया। ये मेमोरी कार्ड देखे ना आजकल तो पढ़े लिखा नहीं हो उसके पास भी मेमोरी कार्ड होता है, वो भी बहुत सारी जो है वो दुकानदार के पास जाकर कहते हैं जरा फिल्में डाउनलोड कर देना इसमें, ये 8 GB का, वैसे अंग्रेजी नहीं बोलता लेकिन बोलता है 8 GB का कार्ड लेकर आया हूँ। अब आप देखिए कार्ड 1 GB का हो, 2 GB का हो, 4 का, 8 का, 16 का, 32 का, 64 का वगैरह वगैरह, सबका साइज एक होता है, कोई छोटा सा कार्ड होता है ना, सबका साइज एक जैसा होता है, लेकिन अंदर वसी होता है कि नहीं होता, बस अल्लाह ताला की दीवी अकल से साइंसदान ने ऐसे जीबी एसडी कार्ड और मेमोरी कार्ड बनाए कि जिसको देखने में सब एक जैसे, आप यहां रख दे 1, 2, 8, 4 कोई फर्क नहीं पता चलेगा, लेकिन अंदर सबकी दुनिया अलग है। इसी तरीके से कब्र सबकी देखने में बजाय एक लगेगी, लेकिन अल्लाह ताला उस कब्र वाले पर अपनी क्या नेमतें नवाजिशात फरमा रहे, सुभान अल्लाह, उस वसत फरमा दी। और रही बात वो काफिर, मां रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अज़बुरु चू गोरे काफिर पुर हलल कि काफिर बादशाह है उसकी जो कब्र बड़ी शानदार है कि जनाब संगे मरमर भी लगा हुआ है और जनाब जो है वो फूलों की चादर चढ़ाई हुई है और गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जा रहा है और फौजी डंडा लेके भी खड़ा रहता है। बादशाह सदर की जो कब्र होती है ना वहां फौजी डंडा लेके भी खड़ा रहता है। पता है क्यों खड़ा रहता है? इसलिए खड़ा रहता है कि बाहर निकलने ना पाए, क्योंकि जो पिटाई हो अंदर ही हो बाहर निकलने ना पाए। अलबत्ता ये याद रखना मसला कि कब्र में पर जो है अपने बाप की कब्र पर भी ये संगे मरमर बनाना ये जायज नहीं है, कच्ची कब्र रखे। एक आदमी था, उसने वो गरीब आदमी था, वो कब्रस्तान गया तो उसकी माँ की कच्ची कब्र थी, मिट्टी थी और मिट्टी भी बहुत ऊंची ना हो, बस हाथ के बराबर हो, इतनी ऊंची काफी है, ऐसे उसको कोहान की तरह ऐसे बनाए, ये उसका तरीका है। और संगे मरमर लगाना कब्र पर ये जायज और दुरुस्त नहीं है, पक्की ना करे कब्र। तो वो अपनी माँ के पास गया, कुरान पाक पढ़ रहा था, कुरान पाक की तरह एक बात सुने मेरे शेख रहमतुल्लाह अलैह ने वाकिफ सुनाया कि एक औरत एक बुजुर्ग के ख्वाब में आई और वो बुजुर्ग से कहने लगी कि मेरा बेटा रोजाना मेरी कब्र पर आता है और मेरे लिए कुरान पाक पढ़ता है। जैसे वो आता है, सलाम करता है, कुरान पाक पढ़ना शुरू कर देता है, उसका पूरा जिस्म नूर में डूब जाता है और नूर में छुप जाता है और मैं अपने बेटे की शक्ल देख नहीं सकती। तो आप मेरे बेटे से जाकर बस इतना फरमा दें कि तुम आने के बाद थोड़ी देर खामोश खड़े हो जाया करो ताकि मैं तुम्हारी शक्ल देख लिया करूं। उन बुजुर्ग ने जाकर उसको समझाया, बेटे ने ऐसी क्या, तो वो दोबारा वही औरत शुक्रिया अदा करने के लिए आई। तो पता ये चला कि जब हम अपने मुर्दे जो जिनको कब्र में अपने अजीज रिश्तेदार के पास जाते हैं वो हमें पहचानते भी हैं कि फला है, वो पहचानते हैं। तो अब वो जो था उसने जाकर अब जब वो अपने बाप की कब्र पर कुरान पाक पढ़ रहा था तो वहीं पर एक अमीर आदमी था जिसने अपने बाप की कब्र संगमरमर और बड़ी शानदार पक्की कब्र बनाई थी। तो उसने कहा, उसने मजाक उड़ाया, उसने कहा देखो तुम हो ना गरीब और तुमने इतनी भी नहीं था कि तुम अपने बाप की कब्र को पक्के बना सकते, देखो हमने कितनी शानदार अपने बाप से मोहब्बत है, कैसी शानदार कब्र बनाई है। तो उसने कहा कि बात यह है कि मैंने अपने बाप की कच्ची कब्र बनाई, इसकी वजह बता दूं। हाँ असल में बात होगी जब मर्द कयामत के दिन उठना है कि नहीं उठना, कहा उठेंगे, कहा मेरे बाप की तो कच्ची कब्र है, वो सिलिया हटाएगा, कच्ची कब्र है, बाहर आ जाएगा। तुम अपने बाप की कब्र में साथ में हथौड़ी छेनी भी रखते ताकि कम से कम तोड़ के बाहर तो आ सके, वहां से बाहर कैसे आएगा। इसलिए कब्र को जो है वो संगमरमर, तो वो जो काफिर है उस काफिर की कब्र पर बड़ी शानदार संगमरमर लगा हुआ है, ग्रेनाइट का पत्थर लगाया हुआ है। क्योंकि आजकल ग्रेनाइट के पत्थर की बड़ी वैल्यू है ना, कि जी ग्रेनाइट का पत्थर लगाया हुआ है, शानदार खूबसूरत बनाई हुई हो, ऊंची कब्र बनाई हुई है। लेकिन मारूमी फरमाते अस बुरूचू गोरे काफिर पुरहलल, बाहर से तो काफिर की कब्र कैसी बढ़िया और शानदार और जबरदस्त है, लेकिन मंदुरू कहरे खुदाए अज़्ज़ुजल, लेकिन अल्लाह ताला का अज़ाब जो उस कब्र पर आले पर नादिल हो रहा है, अल्लाह अल्लाह वो कब्र थोड़ी बचा सकेगी। क्या अच्छी कब्र है जनाब, और ये बात समझ में आ गई ना, बादशाह की कब्र पर, सदर की कब्र पर एक फौजी डंडा लेके खड़ा होता है, मालूम देखा ना, पूरी गन लेकर डंडा लेकर खड़ा होता है, क्यों, ताकि बाहर निकलने ना पाए। उसको पहले कह देते थे कि ये बाहर ना आ जाए, इसको अंदर ही रहने देना, अंदर बाहर नहीं आने देना इसको, यही आलम है बताइए। अल्लाह अल्लाह। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला हम सबको आखिरत की तैयारी की तौफीक दे, और आखिरत की तैयारी के माने यही है कि शरीयत और सुन्नत पर अमल करें, अल्लाह ताला की इदार खुशी के अमाल पर अमल करें। और बाकी रही बात कि हमारे काम रुपया माल पैसा ये सब आएगा, तो देखो आज आज काफिरों के पास जितनी टेक्नोलॉजी है और मेडिकल की जितनी एडवांस मशीनरियां हैं, हमारे पास ऐसी नहीं है, लेकिन जो बीमारी उनके पास है वो हमारे पास भी नहीं है। लिहाजा माल से बढ़िया अस्पताल और यूके अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाके इलाज तो करा सकता है, सेहत नहीं ले सकता। माल से इलाज हो सकता है, सेहत नहीं मिल सकती है, याद रखना इस बात को, क्योंकि सेहत अल्लाह ताला के हाथ में। कितने माल अच्छा हो तो बहुत अच्छा इलाज तो हो जाएगा, लेकिन माल से सेहत नहीं मिलती है। मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह के एक जमाने में हजरत दारुल कुरंगी हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब रहमतुल्लाह अलैह के वालिद माजिद, एक दफा हजरत के घुटने में दर्द हुआ, उस जमाने में हजरत नानकवाड़ा में रहते थे और चौथी या तीसरी चौथी मंजिल पर हजरत का मकान था। तो एक दफा हजरत नमाज पढ़ के आए तो एक दिल्ली मर्केंटाइल के एक सेठ साहब थे दिल्ली बरादरी के, वो भी हजरत से मिलने आए, तो बड़ी मुश्किल से चढ़ते हुए ऊपर आए तो हजरत मुफ्ती साहब भी ऊपर चढ़ गए। तो वो आए तो बड़े हाय हाय हजरत कुर्सी मंगवा दें, फरमाया अच्छा भाई चलो कुर्सी मंगवाए, उसकी कुर्सी पे बैठ गए। तो ये हजरत से एक दोस्ती ताल्लुक भी था उनका। तो हजरत ने पूछा, उसने पूछा कि हजरत आपके घुटनों में तकलीफ हुई थी तो अब तो देखता हूँ आप बड़े मजे से जो है वो मंजिले चढ़ गए, जबकि मेरे भी दर्द बाकी है, तो आपने क्या इलाज किया। हजरत ने फरमाया कि भाई हम गरीब आदमी, हमने हकीम साहब से कहा तो हकीम साहब ने हमें जो है वो 10 पैसे की दवा दी, अल्लाह ताला ने उसमें ऐसी बरकत दी कि अल्लाह ताला ने वो दर्द को दूर फरमा दी। उसने कहा हजरत मैं यूके गया, उस जमाने में बरतानिया गया, यार से 40 समझे 50 साल पुरानी बात, मैं बरतानिया गया और बरतानिया में मैंने उस जमाने में 4 लाख रूपया खर्चा किया, तो उस जमाने का 4 लाख रूपया का मैंने खर्चा किया, लेकिन घुटने का दर्द वही का वही मौजूद है। तो मेरे शेख रहमतुल्लाह अलैह फरमाते देखो अल्लाह ताला को राजी करो, अल्लाह को राजी करो, अल्लाह को खुश रखो, जितना अल्लाह ताला को राजी और खुश रखो दुनिया में भी मजे हैं। बाकी रही बात कि साहब हमें ये मिल जाएगा और वो मिल जाएगा और हमारी बड़ी वो होगी, तो याद रखना ये सब इज्जत की चीज है। बादशाहों ने अल्लाह वालों की, उलमाए रब्बानी इनकी जूतियां सीधी की है, बादशाहों ने अल्लाह वालों की, उलमाए रब्बानी इनकी जूतियां सीधी की, उनके पास कोई दौलत है, और वो दौलत क्या है, अल्लाह ताला की मोहब्बत, अल्लाह ताला की तातर से ऊपर बारे। बस ये चीज अल्लाह अपने करम से मुझको भी और हम सबको नसीब फरमाए। वाखर दुआवा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना वा मौलाना मुहम्मद। ऐ मालिक या अल्लाह। या अल्लाह। Allah.